デバスデバオムナモバハガテバスデバオ
ム
ナモバハガテバスデバオムナモ
バハガテバスデバ
Shrimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 16, Text 40, Chataskant, Sobhadihai, Slok number 40. Slok compulsion, Halka. Gita Majita Tadabhavata,
Gita Majita Tadabhavata,
Yadaha Bhagavatam Dhammam Anavyadyam. Neskinchanaye munaya Atamyam upasate pavargaya Vijita tada bhavata
Vida
bhagvatam dharam avadhyam Nishkinchanaye
munaya
Atmaramayamu vasatam
Jita
mujita
tada bhavata
Yadaha Bhagavatam Dharmanavratyam Nishkinchanaye
munaya
Atmaramayam upasayate pavargaya
Jita majitam tadha bhavatam Yadaha Bhagavatam Dharmanavratyam Nishkinchanaye
munaya
Atmaramayam upasate upargaya
Jita majita da bhavata
Vidaha
bhagavatam dharma manavadyam Nishkinchanaye
munaya
Atmaramayam upasate upargaya
Yata
Bhagavatam
Dharma
Manmadam
Nishkinchanaye
Munaya
Atma
Ramayam Upasate
Apavargaya
जीते जा सकने योग्य
च आह कहा भागवतम जो भक्त ईश्वर के पास पहुंचने में सहायक होता है। धर्मं धर्म अनवृत्ति दोष रहित निष्किंचना जो ऐश्वर्य के द्वारा सुखी रहने की इच्छा नहीं रखते ये जो मुनिया बड़े बड़े विचारक तथा महान साधु आत्मरामा आत्मतुष्ट आत्माराम यम जिसको उपासते पूजते हैं अपरगाया भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अनुवाद हे अजित जब आपने भागवत धर्म कह सुनाया तो वह आपकी विजय थी क्योंकि यह धर्म आपके चरणारविंद की शरण पाने की निष्कलुष प्रणाली है। आत्मतुष्ट चतुसनाह के समान निष्काम व्यक्ति भौतिक कर्मश से मुक्त होने के लिए आपकी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे आपके चरणारविंद की शरण प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। कृष्ण रूपा जी के तरह श्री प्रभुपाद की श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्तिरसामृत सिंधु में इस प्रकार कहा है अन्य अभिलाष शिताशन ज्ञान कर्मनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्तिरोत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति अनुकूल होकर तथा किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म करके या मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से रहित हो। नारद पंचशास्त्र में भी कहा गया है सर्वाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषि सेवनम भक्तिरुच्यते। मनुष्य को समस्त उपाधियों तथा कलमशों से रहित होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह समस्त इंद्रियों के स्वामी की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाकर अपना शुद्ध स्वरूप प्राप्त करे। यही भागवत धर्म पर कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम भाव से श्री कृष्ण की सेवा करे। यही भगवद्गीता नारद पंचरात्र तथा श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य है। भागवत धर्म धर्म की वह प्रक्रिया है जिसे नारद शुकदेव गोस्वामी जी तथा उनके शिष्य परंपरा के भक्तों द्वारा जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं व्याख्यापित है। भागवत धर्म को समझकर मनुष्य तुरंत ही भौतिक कर्मश से मुक्त हो जाता है। जीवात्माएं श्री भगवान के अंश रूप होकर सांसारिक दुखों के बीच विचर रही है। जब भगवान उन्हें स्वयं भागवत धर्म का उपदेश देते हैं और वे उसे ग्रहण कर लेते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। भागवत धर्म का अनुयायी भक्त श्री भगवान का अत्यंत कृतज्ञ रहता है। वह भागवत धर्म से युक्त तथा उससे रहित जीवन के अंतर को समझता है। श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करना और पतित आत्माओं को श्री कृष्ण भावना में लगाना भगवान कृष्ण विजय है। सभी पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रथोक्षजे अहेतु के प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। समस्त मानवता का वही धर्म है जिससे मनुष्य को भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी भक्ति को आत्मतोष के हेतु अबाध तथा निरुद्देश्य होना चाहिए। अतः श्रीमद् भागवतम की धर्म की शुद्ध दिव्य प्रक्रिया है। भागवत 1:2-6।
हरे कृष्णा। भारत भक्तों को सुनाई दे रहा है आपका कमरा मंदिर छोटा है थोड़ा आगे। ओम ज्ञात विनंदस्य ज्ञानांजना शवक्या चक्षुरमिलितनील तस्मै श्रीचैतन्य मनोहृष्णम् स्वयं रूपा Sandeham Shri Guru
Shri Guru Nvesha
Shri Guru Nvesha Shri Guru Nvesha Sahagana Laguna Tarmitam Tam Sajevam
Sandeham Sadhutam Prajansaitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Guru Krishna
Hare Krishna Karmati Guru Hino Vartujara Kare Okesha Okita Kanta Kata Kanta Namaste
Tapta Kanchika Gaurangi
Kare Vipavane Shari Krishna Nusuke Devi
Kuma
Nami Hari
Kire Mahatma
Vajaru Vesha Vipavane Shukhe Vacha
Jai Shri Krishna
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivastani Gaura
Bhaktavinoda
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Jita Majita Tada Bhavata Daha Bhagavatam Dhamam Avad Anagirdyam Niskinchaye Munaya Apnayam Upasate Pahavar Gaya
ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है और इसका संदेश भी बड़ा महत्वपूर्ण है और तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति की ही चर्चा कर रहे हैं ये श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं कौन महाराज चित्रकेतु और महाराज चित्रकेतु इस श्लोक के द्वारा परम भगवान का गुणगान कर रहे हैं महाराज चित्रकेतु राजा थे बड़े खूबसूरत युवक और उनकी अनेक पत्नियां थी उनकी लाखों पत्नियां थी पर किसी पत्नी से भी कोई संतान नहीं थी राजा थे और राजा को खास करके संतान की आवश्यकता रहती है चित्रकेतु में कोई कमी नहीं थी पर जितनी पत्नियों से उन्होंने विवाह किया सब उनमें योग्यता नहीं थी संतान उत्पन्न करने के लिए और इस कारण राजा उदास था एक रूप से हर प्रकार की भौतिक सुविधा थी राजा था खूबसूरत और युवक धनी पर कोई उदार नहीं थी तो हमेशा उदास रहता था एक दिन एक महान संत उनके महल में आए संत का नाम था अंगिरा ऋषि अंगिरा ऋषि जब आए तो उन्होंने बड़े आदर से उनका स्वागत किया बड़ी विनम्रता के साथ उनके चरणों में बैठे और संत बड़े प्रसन्न हुए जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने जब देखा कि महाराज प्रताप रुद्रा राजा होते हुए कितनी विनम्रता से सेवा कर रहे हैं सड़क को साफ कर रहे हैं झाड़ू दे रहे हैं सड़क को धो रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रशंसा कर रहे थे तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें खास योग्यता दी जिसके द्वारा उनके दिव्य लीला का दर्शन प्राप्त कर सके तो इसी प्रकार परम भगवान उनके भक्त बड़े प्रसन्न होते हैं जब वो भक्तों में विनम्रता का भाव देखते हैं तो अंगिरा ऋषि ने देखा कि ये राजा होते हुए इतनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं इतना आदर दे रहे हैं उनके चरणों में बैठ गए तो संत ने पूछा कैसे हो आप एक दूसरे को मिलते पूछते हो कैसे हो हाँ तो राजा ने कहा
क्या आप आत्मज्ञानी हो, आपसे मैं क्या छुपा सकता हूं। इंग्लिश में कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, चेहरे से, चेहरा देखने से अंदाजा हो जाता है मन में क्या भाव है ना। तो राजा ने कहा आपसे मैं क्या छुपाऊं, आप तो आत्मज्ञानी हो, मेरी समस्या यह है कि मेरी उदासी का कारण यह है कि मेरी कोई औलाद नहीं। और राजा ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, अगर एक व्यक्ति भूखा है और प्यासा है तो आप उसे जाकर एक अच्छा हार चढ़ा दो तो वह संतुष्ट होगा। तो आप भूखे और प्यासे हो और आपको बड़े अच्छे वस्त्र दिए जाए पहनने के लिए, बड़ा अच्छा हार दिया जाए, जैसे आप संतुष्ट होंगे, आप नहीं होंगे। तो राजा ने कहा कि मेरे पास एक रूप से हर प्रकार की सुविधा है पर बिल्कुल औलाद नहीं, संतान नहीं। तो ये है उनकी उदासी का कारण। तो अंगिरा ऋषि मुनि ने कहा घबरा मत, तुम्हारा एक पुत्र होगा और ये पुत्र तुम्हारे सुख का कारण बनेगा और साथ में दुख का कारण भी बनेगा। राजा में इतना उत्साह था पुत्र औलाद के लिए कि जब संत ने कहा कि वह तुम्हारे दुख का कारण भी बनेगा, वो समझ नहीं पाए। राजा ने सोचा ठीक है, वीर खानदान का एक ही बेटा होगा, बिगड़ जाएगा, ठीक है सुधार लेंगे। बंगला में प्रभा जी कहते हैं अंधा अच्छा काका नहीं होने, काका नहीं होने से ज्यादा अच्छा है, ब्राइन अंकल बदल मामा की बात। सो उनको बेटा चाहिए था, बिगड़ जाएगा तो ठीक है सुधार लेंगे, सह लेंगे उसकी बेइज्जती वगैरह, ये था उसका भाव। तो संत एक उनकी एक पति कृतार्थ के गर्भ में बच्चा हुआ, थोड़ी देर बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ और उन्होंने उस बेटे का नाम क्या रखा, हर्षोत्सव। तो हर्षोत्सव, हर्ष का अर्थ क्या है, आनंद खुशी, और शोक का है दुख कष्ट। तो एक रूप से देखा जाए हम सब हर्षोत्सव का है। आप आज सुख का कारण बनते हो, कब दुख का कारण बन जाओगे, है ना। जब आपके पास हर प्रकार की सफलता है, सब प्रकार की सुविधा है, तो आप अपने लिए और अपने खानदान के लिए खुशी का साधन बनते हो। और कल मान लो आपको कोई दुर्घटना हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप ही दुख का कारण बन जाओगे। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए जब उनका एक बेटा पैदा हुआ। राजा ने बड़ा दान दिया ब्राह्मणों को, हर प्रकार की सेवा की और राजा बड़ा प्रसन्न था कि उनकी एक पत्नी ने बेटा दिया। और राजा और उसकी पत्नी सारा समय बच्चे को देने लगे हर्षोत्सव को, जिसके कारण जो दूसरे पत्नियां थी उन्होंने बड़ा अपमान महसूस किया। कैन यू से मार्ज इन द बैक, मार्ज यू माइन इफ यू सेट अल बेट इन द बैक, बट इज ट्रांसलेशन इज कमिंग इन टू माई ईयर ऑल द टाइम, इधर ओके मार्ज यू नोट माइंड सॉरी ट्रांसलेशन ओके। सो राजा सारा समय एक ही पत्नी कृतार्थ को देने लगा और अपने बेटे को, और जूसी जो पत्नियां थी उनकी तरफ वो देखता भी नहीं था। उन्होंने कहा अब तो हमारे पति ने हमें नौकरानी बना दिया है, सारा समय वो दे रहा है इस लड़के को और उसकी मां को। तो उनमें बड़ा दुख था। और वैसे भौतिक संसार में लोगों के हृदय में ईर्ष्या द्वेष भी रहता है, ईर्ष्या द्वेष भक्त भक्ति के मार्ग में अड़चन है, इसलिए हमारे संतों ने कहा है, शास्त्र में उपदेश है कि ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना चाहिए। जब तक महाप्रभु ने कहा जब तक ईर्ष्या द्वेष रहेगा आपके हृदय में, पर भगवान आपके हृदय में निवास नहीं करेंगे। तो ईर्ष्या द्वेष से हमें क्या बढ़ाना चाहिए, बचना चाहिए। भाई नौ में ईर्ष्या द्वेष था, क्रोध था कि हमें अभी राजा हमारी तरफ देखता ही नहीं। तो उन्होंने बच्चे की पहली साल के रह में उसे जहर खिला दिया और जिसके कारण हर्षशोक का देहांत हो गया। शुरू में तो मेरे सेवकों ने सोचा वो सो रहा है बेटा, फिर जब उन्हें पता लगा कि बेटा मर गया है, बड़े उदास हुए, रोने लगे, महाराज भी रोने लगे, बड़े उदास हो गए, माँ भी उदास थी, और जो दूसरी पत्नियां थी जिन्होंने झेर खिलाई थी उन्होंने बड़ा अच्छा नाटक किया, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि वो भी शोक में है। तो अंगिरा ऋषि को पता था क्या बीत रहा है। फिर अंगिरा ऋषि वहां आए संत नारद मुनि के साथ और उन्होंने देखा राजा बड़ा उदास है, तो उन्होंने पूछा कि उदासी का कारण क्या है, पिछली बार में आए तुम तो बड़े आनंद में थे, आज उदास हो। तो उन्होंने कहा उदासी का क्या कारण, तो नारद मुनि की दिव्य शक्ति से हर्षशोक वापस जीवित हो गया और हर्षशोक ने माता पिता जो उदास थे रो रहे थे उन्हें कहा कि तुम रो रहे हो पर तुम मुझे कब से जानते हो, कितनी देर से, एक साल से पहले ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था। और उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति से क्या लाभ हुआ, चित्रकेतु उनकी पत्नी का जो उदासी था वो समाप्त हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से अज्ञानता दूर होती है। अज्ञानता के प्रभाव में हम सोचते हैं ये ध्येय हमारा असली स्वरूप है और जीवन का उद्देश्य होना चाहिए इंद्रिय तृप्ति इत्यादि। और जब आप शास्त्रों के संबंध में आते हो, भक्तों के संबंध में आते हो, तो फिर आपको ज्ञान मिलता है क्या, असली वास्तव असली भगवत धर्म का ज्ञान मिलता है, जो कि आज के श्लोक का विषय है। और भगवत धर्म के ज्ञान से अज्ञानता क्या है दूर होती है। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से अंधेरापन दूर होता है, उसी प्रकार इस दिव्य ज्ञान के द्वारा अज्ञानता दूर होती है। तो हर्षशोक ने माता पिता को बड़ा गहरा उपदेश दिया। इस प्रकार भागवतम में अनेक और कथाएं हैं जहां आपको उपदेश मिलता है कि इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है। एक है भागवतम के साथ स्कंद में आप पढ़ते हुए कथा, एक राजा था महाराज की योजना, युद्ध के मैदान में मर गया। जब समय था शमशान घाट ले जाने के लिए, उसकी पत्नियां जो थी वो रोने लगी, शरीर को आगे पर शमशान घाट जाने नहीं दिया, रो रही थी जोर 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 से, इतनी जोर से रो रही थी कि उनका रोना यामराज जी तक पहुंच गया, इतनी वो यामराज भी सुन पाए उनका रोना। तो यामराज जी ने सोचा मुझे इन्हें शिक्षा देने दो। यामराज जी छोटे बालक का रूप ग्रहण करके आए और सभा में, छोटे बालक हर जगह पहुंच जाते हैं, तो उस छोटे बालक ने कहा इतनी जोर से ये रो रही है औरतें ये सोच रही हैं कि ये रोने से पति जीवित हो जाएगा, ये नहीं समझ रहे कि उनका जीवन भी हर पल समाप्त हो रहा है। और इस बालक का उपदेश सुनकर उनकी पत्नियां समझ पाएंगे क्या कि ये शरीर जो है ईश्वर है, और फिर उन्होंने शरीर को आगे शमशान घाट जाने की इजाजत दी। तो आध्यात्मिक ज्ञान के संयोग से अज्ञानता दूर होती है। तो उसी प्रकार हर्ष शोकर ने दिव्य ज्ञान दिया, जिसके द्वारा हर्ष शोकर के माता पिता समझ पाए कि हमारी पहचान कितनी देर से थी, एक साल से थी बस। उससे पहले न वो हमें जानते थे, ना मैं हम उन्हें जानते थे। और उन्होंने माता पिता के ज्ञान को दूर किया। और नारद मुनि की संगत भी उन्हें प्राप्त हुई, और नारद मुनि ने फिर उन्होंने नारद मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया। नारद मुनि ने उन्हें एक मंत्र दिया जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान किया जाता है। और एक हफ्ते के लिए बड़ी गहरी तपस्या उन्होंने की, सिर्फ जल पी रहे थे बस। उन्होंने भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन प्राप्त हो सकता है तपस्या के माध्यम से। और जब भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ तो चित्रकेतु ने भगवान का गुणगान किया, और अनेक श्लोकों के द्वारा। और इन श्लोकों में आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो चित्रकेतु महाराज के द्वारा परम भगवान की प्रशंसा, परम भगवान का गुणगान। श्रीमद् भागवतम में 18 श्लोक हैं, और आप पढ़ते हो अनेक भक्तों के द्वारा परम भगवान का गुणगान। तो आज के श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है, और आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने हमारे शास्त्रों के 3 बड़े प्रसिद्ध श्लोकों का उपयोग किया है ये स्थापित करने के लिए कि जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए अहितु की भक्ति या शुद्ध भक्ति या भगवत सेवा। तो आज के श्लोक में चित्रकेतु महाराज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अजीत, तो गॉड इज अनकाउंटेबल अजीत। तो भगवान को आप कैसे प्राप्त कर सकते हो? भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, पर आज के इस श्लोक में और तात्पर्य में बड़ी गहराई के साथ इस विषय की चर्चा की जा रही है। भगवान वैसे तो अजीत है, भगवान को कोई कॉन्कर नहीं कर सकता। धन से आप सोचो कि हम धन इत्यादि से भगवान को जीत लेंगे, नहीं। भगवान कौन है? हे अजीत, जब आपने भगवत धर्म कह सुनाया तो भगवत धर्म की जो शिक्षा है ये है माध्यम जिसके द्वारा आप परम भगवान को जीत सकते हो। और भगवत धर्म जो मार्ग है इसके द्वारा आप परम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हो। और ये भगवत धर्म जो है इसके द्वारा आपको शुद्ध भक्ति का संदेश मिल रहा है, और भगवत धर्म के पालन से आप परम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हो। तो दूसरे शब्दों में चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं कि वैसे तो आप अजीत हो, आप कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर भगवत धर्म की जो शिक्षा है इसके पालन से आपके चरण कमलों का स्मरण की शरण प्राप्त हो सकती है, और इसके पालन से हम अति संतुष्ट प्राप्त कर सकते हैं, और इसके पालन से आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हो, ये भगवत धर्म का अर्थ क्या है कि नहीं? क्योंकि इस पूरे श्लोक में भगवत धर्म पर बल दिया जा रहा है, ये स्थापित किया जा रहा है कि भगवत धर्म उनके लिए है जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। भगवत धर्म एक साधन है भगवान पर विजय प्राप्त करने के लिए, और भगवत ज्ञान की शिक्षा कहां से प्राप्त होती है? आत्मज्ञानी भक्तों के द्वारा। यहां कुमारराज का वर्णन किया गया है जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिनके मन में एक ही भाव था कि भगवान की सेवा करते रहे। जब उनके पिता ने भी कहा कि विवाह करो संतान बढ़ाने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम किसी प्रकार से विचलित नहीं होना चाहते, हम केवल भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं। तो भगवत धर्म के विषय में प्रभुपाद जी ने अनेक समय भगवत धर्म विषय पर प्रवचन दिए, और आज के इस श्लोक के साथ प्रभुपाद जी तात्पर्य में अनेक प्रसिद्ध श्लोकों का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी रूपा गोस्वामी जी का एक प्रसिद्ध श्लोक जो भक्ति रस अमृत सिंधु में प्राप्त होता है, उसका वर्णन करते हैं। रूपा गोस्वामी, जैसे आप जानते हो, एक समय बड़े प्रसिद्ध राजा के लगभग प्रधानमंत्री के समान कार्य कर रहे थे। फिर उन्होंने ये सब सरकारी नौकरी छोड़ी, और सरकारी नौकरी भी कर रहे थे जबरदस्ती। उन्हें जबरदस्ती जोड़ा गया था उनके भाई के साथ सरकारी नौकरी में, क्योंकि राजा मुसलमान था, आबादी लगभग हिंदू थी, राजा पठान था, और वो चाहता था कि कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति जिसमें प्रजा की श्रद्धा हो वो शासन करे। तो रूपा गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन भेजा था दो आदेशों के साथ। एक था उन स्थानों को खोजना जब भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की थी, मंदिरों की स्थापना करना, और भक्ति के विषय में ग्रंथों की रचना करना। और रूपा गोस्वामी जी ने अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। श्रील प्रभुपाद जी ने खास करके दो ग्रंथों का अनुवाद किया है, भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेश रामायण। और भक्ति रसामृत सिंधु को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया है नेक्स्ट ऑफ डिवोशन के नाम पर। मैं प्रभुपाद जी के साथ था 1970 में, 69 में लॉस एंजलिस में, जब ये भक्ति रसामृत सिंधु नेक्स्ट ऑफ डिवोशन जापान से छप कर आई थी। उन दिन में हमारी किताबें डायने पॉन प्रेस टोक्यो में छापी जाती थी, तो पूरा मंदिर भरा हुआ था। और प्रभुपाद जी ने पहली कॉपी खोली सबके सामने, सबको दिखाकर कहा दिस इज द लॉ बुक ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट, एवरी वन शुड स्टडी दिस बुक। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के अनेक विधियों का वर्णन है। और नरोत्तम दास ठाकुर बड़े प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य एक भजन में कहते हैं रूप रघुनाथ पदे कई भी आकृति कभी बाहरा वो से युग प्रीति। कब वो शुभ दिन आएगा जब मैं रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन कर सकूंगा। तो रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, खास करके ये दो ग्रंथ भक्ति रत्न सिंधु उपदेश में। हम भक्तों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए भक्ति की विधियों को समझने के लिए। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं अन्यार की रूपा गोस्वामी ने कहा भक्ति रसम सिंधु में अन्यार विराज शून्य ज्ञान क्रमण अनवृतम अनुकूलन कृष्ण शिलाल भक्ति उत्तम। तो इस श्लोक में रूपा गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं भगवत धर्म का क्या अर्थ। वो कहते हैं कि हमें दिव्य सेवा करनी चाहिए परम भगवान के लिए, वो अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं। दूसरे शब्द में भगवान की जो सेवा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि हमारी इच्छा के अनुसार। बौद्धिक संसार में हम सोचते हैं हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। तो यहां कहा जा रहा है अनुकूलन कृष्णो, अनुकूलन का अर्थ है जो अनुकूल कार्य है उसे ही स्वीकार करना। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है जो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी को दी थी, जिसे आप श्रीमद जिसे आप चैतन्य चतुर्मृत में पढ़ते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दिया है कि भगवान के अगर आप शरणागत होना चाहते हो तो उसके लिए छह नियमों की आवश्यकता है। पहला नियम क्या है? भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। और इसके साथ दूसरा नियम यह है, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और इस विषय में रूप गोस्वामी जी हमें कहते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्र, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। मान लो आपके शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, गहरी बीमारी, तो उसके इलाज के लिए आप अपना सोना चांदी भी बेचना पड़े, घर भी बेचना पड़े, आप बेचने को तैयार हो जाते हो, है कि नहीं? आपने किसी हालत में भी अपना इलाज कराना है, ठीक है? तो उसी प्रकार रूपक गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए अगर आपको कुछ त्यागना भी पड़े तो त्यागो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु की शरण लो, सेवा करो, दीक्षा लो, फिर पूछो मुझे क्या त्यागना चाहिए भगवत धर्म के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इस चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भक्ति के लिए अनुकूल है स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रेम के साथ सेवा करनी चाहिए परम भगवान के लिए, भौतिक इच्छाओं के बगैर और कर्मगत कार्यों के बगैर, और वो है शुद्ध भक्ति। तो आप कहोगे, महाराज ये तो बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड आपने दे दिया, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कर्मकर नहीं, हाँ शुद्ध भक्ति, निष्काम भाव से जुड़ो। हमारी तो अनेक भौतिक इच्छाएं हैं, है ना? हम तो इस कर्म में आए थे इस भावना से, ये इच्छा पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी, ये इच्छा पूरी होगी, आप कह रहे हो सब इच्छाओं को त्यागे, कैसे त्यागे? और फिर आप ये भी कह सकते हो कि भगवान ने भगवद गीता के सातवें अध्याय में क्या कहा है, चार प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं कि नहीं? एक है एक जिसे धन चाहिए, दूसरा है रोगी पीड़ित, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है ज्ञान प्रसार। तो अगर ध्यान से देखा जाए इन चार में निष्काम भाव से एक ही व्यक्ति जुड़ता है, जो ज्ञान के आधार पर मेरे शरण में आता है। उसके पास ये ज्ञान है, सर्वधर्मा पैदा माँ मैं कम शरण राजा, भगवान कह रहे मेरे शरण में आओ तो मुझे भगवान के शरण में आना चाहिए। पर जिसे धन चाहिए, जो रोग पीड़ा के कारण आता है या किसी और कारण वर्ष जुड़ता है भगवान से, वो तो निष्काम भाव नहीं कराएगा, है कि नहीं? वो तो सकाम भाव से जुड़ रहा है। तो आप कहोगे ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो चाहे कोई भी कारण हो, शुद्ध भक्ति को अपनाइए। शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति है कि जब आप भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो ये जो भौतिक इच्छाएं भी हैं वो शुद्ध हो जाएंगी और ये समाप्त हो जाएंगे। आप शास्त्र में ध्रुव महाराज का उदाहरण पढ़ते हो, किस प्रकार वो जंगल में गए थे शुरू में तो इस भावना से कि मुझे ऐसा राज्य प्राप्त हो जो मेरे खानदान में किसी को प्राप्त नहीं हुआ हो। और जब उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया तपस्या के कारण, उन्हें इतना आनंद आया कि उन्होंने कहा, मैं निकला था टूटे हुए शीशों की खोज में और मुझे एक हीरा प्राप्त हो गया है। हरे कृष्ण। तो शास्त्रों का निर्णय है कि चाहे कुछ भी कारण हो, आप आप कृष्ण की सेवा में जुड़े हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो कम बुद्धि के व्यक्ति हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, पर जो वर देवता दे रहे हैं वो वर कहां से आ रहा है? मेरे द्वारा ही आ रहा है। तो हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति को अपनाएं, और इस मार्ग में इतनी शक्ति है कि अगर आप ध्यान से जुड़ोगे इस मार्ग में तो भगवत भक्ति प्राप्त करोगे और शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकोगे। क्यों? क्योंकि इस मार्ग में आप भगवान की भगवान के आदेश का पालन करते हो, और इस आदेश के पालन से अशुद्ध मन इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी आगे इसी तात्पर्य में नाद पंचरत्न का एक बड़े प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग कर रहे हैं। शायद आप सब ने इन श्लोकों को कंठस्थ किया हो। आप इसे कितने भक्तों ने अन्य सुनियम को कंठस्थ किया हुआ है? अच्छा, सब ने नहीं, सब। और अगला नाद नाद पंचरत्न से वे नाद मुनि कहते हैं, सर्वोपाधि विरिन मुक्ताम तत्पर बिना निर्मलम ऋषि के न सेवना भक्ति पूछ सके। तो नाद मुनि इस बड़े प्रसिद्ध श्लोक में, आप इसे कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? सर्वोपाधि विनिर मुक्ताम, अच्छा सबने नहीं। आप भक्तों को इन दोनों श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस श्लोक में नारद मुनि क्या कहें? सर्वोपाधि विनिर मुक्तम तत्प्रेरणा ऋषिकेन सेना भक्ति उच्चते। ये व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए और उन्हें मन और इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। किसमें? ऋषिकेश की सेवा में। भगवान के हजारों नाम हैं जिनमें एक है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। तो हमें मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। किस लिए? भगवान की सेवा में। हमारे शास्त्र में इस विषय पर बड़े प्रसिद्ध उदाहरण है। आप पढ़ते हो अमृत मृणाल की कथा, जो राजा होते हुए भी भगवान के ऊंचे कोटि के भक्त है, और जिन्होंने हमें उदाहरण दिया है किस प्रकार आप अनेक इंद्रियों का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने नेत्रों का उपयोग किया भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो आप अगर घर में भी हो, आपके पास इंटरनेट सुविधा है, अब भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने अपने पैरों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए। उन्होंने अपने हाथों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। अपने जीभ का उपयोग किया किस लिए? भगवान का गुणगान करने के लिए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। कानों का उपयोग किया किस लिए? भगवान का गुणगान सुनने के लिए। अपने सिर का उपयोग किया भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए। तो इस प्रकार अमरीश महाराज ने हमें ये उपदेश दिया है किस प्रकार हम भी मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं भगवान के सेवा में। और उन्होंने अपने मन का उपयोग किया किस लिए? भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवतम का, सर्व मना कृष्ण पदारविंदयो। कहते मेरा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करें। तो नारद मुनि कह रहे हैं इस प्रसिद्ध श्लोक में, और प्रभुपाद जी इसकी इस विषय की स्थापना कर रहे हैं कि भगवत धर्म का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में, और हमारा अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति के मार्ग से जुड़े। आप भौतिक इच्छाओं के साथ भी जुड़ सकते हो, पर भक्ति योग में इतनी गहरी शक्ति है कि अगर आप भक्ति योग की विधियों का पालन करोगे तो आपके अशुद्ध भाव शुद्ध हो जाएंगे। आप सबने तो भारत भूमि में जन्म लिया है, पर उन देश में भी जहां की किसी ने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, जो जुड़े हुए थे पाप के कार्यों में, पर जब उन्होंने भगवत धर्म की शिक्षा को अपनाया तो क्या परिणाम हुआ? ये जो भौतिक इच्छाएं थी आस्ते आस्ते समाप्त हो गई। और जब तक हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे तो इसके द्वारा हम मन और इंद्रियों को वश में ला सकते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम भक्ति की विधियों का पालन करें। ये जो आपको उपदेश दिया जाता है, उदाहरण के लिए श्रवणम कीर्तनम भगवत नाम है, क्या भगवत नाम का अर्थ है? भगवान का शुद्ध संदेश। और भगवान का शुद्ध संदेश क्या है? उदाहरण के लिए कलयुग में क्या है भगवत प्राप्ति का साधन? हरि नाम। भगवत नाम का ये अर्थ है कि आप भगवान के सिद्धांत का पालन करो। भगवान का क्या उपदेश है? खरे दशे निराज नस्ते का महागुना कीर्तन देव कृष्ण से हम मुक्त संघर्ष सफल हो जाए। कि अगर आप ये इस कलयुग में दोष ही दोष है, प्रे कौन है? क्या भगवान का नाम। अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो उसे क्या लाभ है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मांजना। पहला लाभ ये है जो भौतिक इच्छाएं हैं वो आप ये भी कह सकते हो हमारे हृदय में इतनी इच्छाएं हैं, जैसे पापा जी कहते थे हमारा हृदय कोले से भी ज्यादा काला है, इतनी इच्छाएं हैं। तो इन सब इच्छाओं को आप दूर कर सकते हो, वश में ला सकते हो अगर आप ये हरि नाम का लाभ उठाओ। तो जब इस श्लोक में महाराज चित्रकेतु स्पष्ट ये स्थापित कर रहे हैं कि भगवान अजीत हैं, भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कोई इतनी आसानी से समझ नहीं सकता, पर जो व्यक्ति भगवत धर्म के नियमों का पालन करे, भगवत धर्म की शिक्षा का पालन करे, वो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर सकेगा। दूसरे शब्द में अगर आप भगवान को आकर्षित करना चाहते हो, हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि हमारा प्रयास ये नहीं होना चाहिए ट्राई टू सी गॉड, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस प्रकार की सेवा करें कि परम भगवान क्या आपको देखने के लिए आए। इस प्रकार से हमारा भाव होना चाहिए। भगवान इतने सस्ते नहीं है, कई बार लोग कहते हैं हाँ कैन यू शो मी गॉड, तो हमारा प्रभा जी कहते थे क्या अभी अभी आई से सी गॉड, भगवान को देखने के लिए हमें नेत्रों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक नेत्रों की। तो हरि नाम का एक लाभ है काम को लोभ मोह मद मत्सर का जो प्रभाव है वो हंसते हंसते पिघलते जाता है। ये निर्भर है आपके प्रयास के ऊपर। अगर बड़े ध्यान से जाप इत्यादि कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, तो इसका तेज असर पड़ेगा। अगर ध्यान से नहीं कर रहे, बकायदा माला का जाप इत्यादि नहीं करते, तो इसका प्रभाव बहुत हंसते हंसते होगा। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं हमें मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए सदा ऋषिकेश की सेवा में। और अगर हम मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करेंगे भगवान की सेवा में तो ये है शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति का ये अर्थ नहीं कि आपको समाज त्यागना, घर ताग त्यागना, कारोबार त्यागना। शुद्ध भक्ति का अर्थ यह है कि आप भगवान की शिक्षा का पालन करो। जैसे भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम, हे मेरे प्रिय पुत्र तुम लोग तपस्या का पालन करो, किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा? अनंतम असली आनंद मिलेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी भी श्री शास्त्र के श्लोक में क्या कह रहे हैं, अनंत बुद्धि वर्धनम, भगवान के नामों के उच्चारण का एक और लाभ यह है कि आपको असली आनंद मिलेगा। और भौतिक समाज में हमारा अनुभव है कि अगर आनंद प्राप्त भी हो असली हंसते घटते जाते हैं ना, तो जो आध्यात्मिक आनंद है ये केवल क्या बढ़ते ही जाता है। तो इस श्लोक में प्रबली तात्पर्य में समझा रहे हैं, जब आप मन इंद्रिया बुद्धि का उपयोग करके भगवान की सेवा में ऋषिकेश की सेवा में जो कि नारद मुनि का आदेश है, तो ये भी क्या कहलाता है भगवत धर्म। केवल भगवत धर्म का अर्थ है भक्ति की विधियों का पालन करना और उन कार्यों को स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है, उन्हें त्यागना जो प्रतिकूल है। तो शुक्रदेव गोस्वामी और नारद मुनि और अनेक संत हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। ये प्रभु जी इसका भी वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में, सर्व पारा महाजन है जिनमें नारद मुनि भी हैं। स्वयं नारद शंभु कौमन कपिलो मनो पलदो जन को विस्म बली वही सके वह। ये जो बारह महाजन हैं जिनमें कुमारस भी है, वो हमें केवल शुद्ध भक्ति का उपदेश दे रहे हैं या भगवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में कि भगवत धर्म की शिक्षा के पालन से बौद्धिक आकर्षण से आप मुक्त हो सकते हो। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहले और जब उन्होंने इस्कॉन संस्था स्थापित की, तो इस समय अमेरिका में ड्रग अब्यूज वॉज वेरी बिग प्रॉब्लम। आज भी है, अभी तो सरकार ने ऐसी स्थिति पर उन्होंने लीगलाइज कर लिया ड्रग अब्यूज, उन दिनों में लीगलाइज नहीं किया था। तो वो सरकार इतना पैसा खरीदती थी लोगों को रोकने के लिए ड्रग अब्यूज से। तो एक बार एक बड़ा इंस्पेक्टर सरकार का प्रभुपाद जी को मिलने आया, उसने कहा वी आर स्पेंडिंग मिलियन ऑफ डॉलर वी कांट स्टॉप ड्रग अब्यूज एंड वी सी द योर पीपल डोंट इवन टेक टी एंड कॉफी। उसने कहा कि हम लाखों डॉलर खर्च रहे हैं और हम ड्रग अब्यूज नहीं रोक सकते और आपके भक्त चाय भी नहीं पी रहे हमारे अमेरिकन वर्ग कैसे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यू आर द गिव पीपल अ पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव। मानव इंद्रियों को सेवा चाहिए, अगर आप उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे तो कहां जुड़े रहेंगे गलत कामों में। इसलिए ज्यादा बेहतर है आप कहां लगाओ इन्हें भगवान की सेवा में। मन को किसी न किसी विषय का चिंतन तो करना है, अगर भगवान की लीला भगवान के उपदेश भगवान के गुण भगवान के रूप का स्मरण नहीं करोगे तो मन भटकेगा गलत भावों के साथ। इसलिए हमारे शास्त्रों का और संतों का निर्णय क्या है, सदा भगवान की सेवा में ही जुड़े रहे। तो आगे जाकर प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंध का एक और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसका वर्णन कर रहे हैं। असल में आज का जो श्लोक पर तात्पर्य है इसमें इतना अधिक महत्वपूर्ण संदेश है कि आप इसी श्लोक पर कई दिनों तक प्रवचन कर सकते हो। तो आगे प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंध का एक और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसका वर्णन कर रहे हैं। वो कौन सा श्लोक है, सर्वे पुंसाम पर धर्मो यथो भक्ति यथोक्षते अहित कर प्रतियोगिता ये आत्मा से प्रसिद्ध थी। कह रहे हैं कि सबसे ऊंचा धर्म वो है जिसमें आप शुद्ध भक्ति की भावना से भगवान की सेवा करते हो बिना किसी भौतिक इच्छा के और बिना किसी रुकावट के, और किस लिए, केवल भगवान की खुशी के लिए। ये नहीं कि भगवान की भक्ति करेंगे पर हमें एक ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा मिलेगी तो हम भगवान की भक्ति करेंगे नहीं तो हम नहीं करेंगे। उस भाव से भी आप कर सकते हो पर अगर आपको सबसे ऊंचा परिणाम चाहिए, अगर आप जैसे आप भौतिक क्षेत्र में आप जब प्रसाद खाते हो तो आप चाहते हो अच्छा बना हुआ है ना, आपको है कि टॉप ऑफ द लाइन चाहिए तो भक्ति भी हमें ये प्रयास करें। उत्तम सबसे उत्तम भक्ति क्या है, वो सबसे उत्तम भक्ति है शुद्ध भक्ति जो आप निभाते हो बिना किसी भौतिक इच्छा के बिना किसी कर्मकर्ण भाव के। तो आप ये कह सकते हो ये तो बड़ा ऊंचा स्टैंडर्ड है, हम तो उस स्थिति पर नहीं हैं अभी, तो घबराओ मत, अगर आप ये भक्ति योग की शिक्षा का नाम उठाओगे तो फिर आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकोगे। चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने भक्ति योग की शिक्षा को इतना सरल बना दिया इस कलयुग में। अगर हम ये महाप्रभु की शिक्षा का पालन करें तो इसके द्वारा आप अपने हृदय में शुद्ध भक्ति के भाव को अनुकूल कर सकते हो। हर कार्य संभव है प्रयास के द्वारा। जैसे आप कहते हैं ना, गॉड हैज डोज हेल्प देमसेल्फ, भगवान किनका सहयोग करते हैं, जो स्वयं प्रयास करते हैं। तो आप अभी ये जानना चाहोगे कि अगर आप भौतिक आकर्षण से बचना चाहते हो, अगर आप ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहते हो, काम क्रोध इत्यादि से बचना चाहते हो, तो क्या है उपाय? तो जैसे आप जानते हो, उपाय है हरि नाम का उच्चारण, उपाय है शास्त्रों का अध्ययन, और परम भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं, क्या जब वो देखते हैं कि हम इन शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। और भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की इच्छा है कि पूरा मानव समाज इस शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चले। भगवान चाहते हैं कि हर व्यक्ति असली सुख प्राप्त करे। भगवान चाहते हैं कि पूरा समाज सुखी बने। पर पूरा समाज सुखी कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? इस शिक्षा के आधार पर। इसीलिए परम भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है जो मेरा प्रचार करता है। क्योंकि जब भगवान देखते हैं कि उनकी औलाद उनके धाम वापस लौटने का प्रयास कर रही है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी कई बार एक बड़ा सरल उदाहरण देते थे, जैसे अगर किसी खानदान में बच्चा घर छोड़कर चले जाता है तो माता पिता उदास हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? कि नहीं चिंता में होते हैं, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, पुलिस वाले के पास जाते हैं, सब जगह जाते हैं बच्चे को खोजने के लिए। उसी प्रकार परम पिता, हमारे परम पिता दुखी है ये देखकर कि हम बच्चे उनसे दूर रहना चाहते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि भौतिक संसार में चाहे कितनी भी अच्छी सुविधा प्राप्त हो, क्या है? कष्ट ही कष्ट, क्लेश ही क्लेश। सच बात है या दूर दुखा रहे हम? ये दो लक्षण इनके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। चाहे आप करोड़पति बन जाओ, वरपति बन जाओ, इन सात प्रकार कष्टों से कोई नहीं बच सकता। इसलिए शास्त्र का निर्णय क्या है? भगवान के शरणागत होना चाहिए। तो हम सबका असली भाव क्या होना चाहिए? कि हम किसी न किसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण लें। और यह संभव है हर व्यक्ति के लिए अगर वो भगवान की शिक्षा का पालन करे। और चैतन्य महाप्रभु जी ने इस मार्ग को बहुत ही सरल बना दिया है। चैंट हरे कृष्णा, गीता भागवत पढ़ो, साधु संगत का लाभ उठाओ, जो खाओ तो कृष्णा प्रसाद ही खाओ, शास्त्र की शिक्षा के आधार पर रहो, और फिर आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। तो आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। आज के श्लोक और आज के तात्पर्य में यह कहा गया है, भगवान की विजय जब है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं बच्चे उनकी सेवा में वापस जुड़ रहे हैं। इसी भाव के साथ शास्त्र में अनेक श्लोक है जहां इस भाव को प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए भागवतम के 3rd स्कंध में भगवान कपिल देव साधुओं के लक्षणों का वर्णन करते हैं और इस विषय में कहते हैं, तितिक्षवा करुणिकहा। करुणिकहा का क्या अर्थ है? दयालु। भक्त का एक लक्षण यह है कि वो अत्यंत दयालु होता है और वो जानता है असली दया अगर देनी है क्या है साधन। और भागवतम के 4th स्कंध में ज्ञान रमणी उपदेश देते हैं कि अगर भगवान को संतुष्ट करना चाहो किन चीजों की आवश्यकता है। इस विषय में वो कहते हैं दयाया सर्वपतेषु संतुष्ट ये केना वा सर्वेंद्रिय पाशांत जातु सत्यशु जनार्दना। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तुष्यातेषु जनार्दना तो एक आवश्यक भाव होना चाहिए दयाया, दया का भाव, दया का। लोग सोचते हैं भौतिक समाज में एक दया का भाव का अर्थ है गरीबों को भौतिक शिक्षा दे देना या कैटरिक ऑपरेशन करा देना, असली दया है लोगों को ज्ञान देना जिसके द्वारा वो भगवत धर्म का उपदेश समझ सके, जिसके द्वारा उनमें ये भाव हो कि हमने शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ना है क्योंकि यह है सबसे उत्तम मार्ग। और इस भाव के साथ चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रचार के कार्यों को बल दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपना जब संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया एक दिन उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया, खास करके भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को, और उन्हें बुलाकर उन्होंने कहा हे हरिदास हे नित्यानंद तुम लोग जाओ घर घर जाओ लोगों से भिक्षा मांगो और ये लोगों को कहो क्या बोलो कृष्णा बाजो कृष्णा बोलो कृष्णा शिक्षा हरे को कहो कृष्णा का नाम ले कृष्णा की उपासना करे और कृष्णा की शिक्षा को अपनाए। क्यों? कि अगर हम कृष्णा का नाम लेंगे तो खुद ही खुद भौतिक आकर्षण भौतिक इच्छाएं दूर होंगी, कृष्णा की उपासना करोगे तो उसके बाद खुद भी आपका ऐश्वर्य शुद्ध बनेगा। आप उदाहरण के लिए जब मंदिर आते हो भगवान का दर्शन लेने के लिए कृष्णा बलराम जगन्नाथ वल्लभ बलराम राधिका रमन जी के सामने गौर निताय के सामने प्रणाम करते हो तो इस प्रणाम करने से भी आपका जो आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ता है। क्यों? हर बार आप प्रणाम करते हो भगवान को आपका आपकी भौतिक इच्छाएं कम होते जाती हैं। तो बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण प्रयोग कृष्ण शिक्षा, वो कृष्ण की शिक्षा कहां है कहां प्राप्त होती है कृष्ण की शिक्षा कहां 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 भगवत गीता भगवतम इत्यादि ग्रंथों में। और आगे उन्होंने कहा कृष्णा प्राण कृष्णा दान कृष्णा से ही जीवन, कृष्णा ही आपका असली जीवन है वो यही असली धन है। तो इस आदेश के अनुसार भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर ने घर घर जाकर प्रचार का कार्य आरंभ किया और कई घरों में जब वो जा रहे थे उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया जा रहा था। लोग कहते थे सन्यासी आ गए, सन्यासी के वस्त्र में वो जा रहे थे, बैठिए प्रसाद खाइए, हार चढ़ाते थे उन्हें। तो कई घरों में वो जाते थे लोग उनकी बेइज्जती भी कर देते थे, कहते थे लगता है जासूस आज आए हैं सन्यासी के रूप में, देखना चाहते हैं घर में क्या है, फिर उनके मित्र आएंगे हमें लूटने के लिए। तो जब ऐसे वो कहते थे तो नित्यानंद हरिदास थोड़ा हंसते थे। कई घरों में वो जाते थे उनका स्वागत, उनके लिए दरवाजा भी नहीं खोलते थे, लोगों को पता था जब किसको पता लग जाए कि हाँ ये दो सन्यासी आ गए निमाए के मित्र, कई जो उनका विरोध कर रहे थे कहते थे ये निमाए और पागल के प्रभाव में आए हैं, ये लोग भी पागल बन गए, पागलों का संदेश देने जाप करो। तो वो कहते थे तुमने हमें अंदर आने नहीं दिया जब हमारा हमने प्रयास किया था अंदर आने के लिए, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे शिवा संगन में तो केवल जो उनके प्रिय भक्त थे उन्हें ही ये सुविधा दी गई थी उनकी अद्भुत लीला का दर्शन प्राप्त करने के लिए, सबको नहीं। तो कहीं उनकी बेइज्जती करते थे उन्हें अंदर करके भी आने नहीं देते थे। जब भी मां नित्यानंद और हरिदास ने प्रचार का कार्य नहीं रोका तो प्रचार के कार्य पर शास्त्र में वर्णन है, जैसे भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं पांचवें स्कंध में, एक बुद्धिमान व्यक्ति अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में जाते हुए जब देखता है तो वो क्या करता है। कभी आप सड़क में चलते होगे और आप देखोगे कोई अंधा व्यक्ति चल रहा है, आप उसके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देते हो, कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं उनका ये भाव रहता है कि पूरे समाज को जोड़ा जाए भगवान की शिक्षा के आधार पर। और चैतन्य महाप्रभु जब एक समय हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए, हरिदास ठाकुर की उनका जन्म मुसलमान खानदान में हुआ था, तो वो कभी भी वो अंदर नहीं गए जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर, पर रोज महाप्रभु उन्हें मिलने आते थे, उनके सेवक उनको महाप्रसाद मिला कर देते थे। एक दिन जब महाप्रभु गए उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हरिदास ये बताओ इन वृक्षों की यमुना का उद्धार कैसे होगा। और हरिदास ने कहा प्रभु चिंता न कर लिया, हे भगवान आप चिंता मत करो, हा नाम बालिकाएं रामाभास है, लोग ये हरि नाम का अपराध रहित उच्चारण करेंगे, इसके द्वारा उनके हृदय भी शुद्ध बनेगा। तो ये ज्ञान कहां प्राप्त होगा, कहां कहां शास्त्रों में। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतने प्रयास से इन ग्रंथों का अनुवाद किया। प्रभुपाद जी के गुरु जी ने उन्हें आदेश दिया था ग्रंथों को प्रकाशित करो और वितरण करो, क्यों? धन के मालिक में नहीं। इस दृष्टि से इन शास्त्रों के भगवान की वाणी, जैसे आज इस्कॉन के 500 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में, हजारों भक्त हैं, पर ये सब भक्त कैसे जुड़े हैं? प्रचार के माध्यम से। और प्रचार कैसे हो रहा है? भक्तों द्वारा और ग्रंथों के द्वारा। जब लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन्हें क्या ज्ञान मिलता है? ये है भगवान का उपदेश, ये है भगवान की इच्छा, और हमें इस इच्छा को पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे आप जानते हो हर साल हमारे भक्त जुड़ते हैं इस प्रचार के मैराथन में, आप कहोगे तो गीता मैराथन है, तो गीता मैराथन मतलब प्रचार का मैराथन। और गीता जयंती उपलक्ष ये योजना हम करते हैं इस भावना से कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और जीवन को सुधारेंगे। आप कई बार हमारे मन में भाव आता है कि हम बांट देते हैं ग्रंथ, कोई खरीदता नहीं। लोग प्रभाव कहते थे दिस बुक्स आर टाइम बॉम्ब्स, किसी वक्त भी एक्सप्लोर हो सकते हैं। मुझे एक भक्त ने कथा सुनाई कि उनके एक मित्र के घर में एक मित्र ने 1980 में एक गीता खरीदी थी, इसका मंदिर गया था और एक गीता खरीदा 1980 में बॉम्बे में, तो उसके बाद जो गीता खोली भी नहीं, खरीद कर अपने बुक शॉप में दौड़ दिया। फिर कोई 15 साल बाद कोई दुर्घटना दी थी उसके खानदान में, तो वो दुखी था और उसने सोचा गीता पढ़ने तो बोले। वो जो गीता उसने 1980 में ली थी वो अभी तक थी उसके पास, तो 15 साल बाद उसने गीता पढ़ना शुरू किया। और जब गीता पढ़ना शुरू किया उसे लगा अब मेरा शोक घटते जा रहा है। जैसे आज के श्लोक में आपने सुना ज्ञान से शोक दुख घटते जाता है, महाराज चित्रकेतु भी कितने शोक में थे, और जब उन्होंने दिव्य ज्ञान सुना तो वो शोक समाप्त हो गया। तो फिर उसने गीता पढ़ना शुरू किया, जैसे गीता पढ़ना शुरू किया शोक घटते गया। फिर उन्हें उपदेश मिला कि हरि नाम का जाप करो, फिर उन्हें आगे बढ़े तो इस्कॉन के मंदिर में जाना शुरू किया, फिर भक्तों के संग में आना शुरू किया और अब बड़े अच्छे भक्त बन गए हैं। तो गीता कहां थी उनके घर में 1980 में, 15 साल तक इसने एक पेज नहीं खोला, वैसे की वैसे थी। फिर जब खोला 15 इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक भी ध्यान से पढ़ ले और एक श्लोक को भी अपना ले, उसका जीवन सुधर सकता है। आपको पता है कि आपके दिल्ली शहर में प्रभुपाद जी ने कितना समय काटा प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी निवास करते थे वृंदावन में, थर्ड क्लास डब्बे में आते थे मथुरा से दिल्ली, आगे साइकिल रिक्शा और टांगा में जाते थे किताबों को छापने के लिए और लोगों के पास जाते थे चंदा इकट्ठे करने के लिए, किसके ग्रंथ के को प्रकाशित करने के लिए। एक समय प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि बॉम्बे जाइए, एक बड़ी धार्मिक औरत है श्रीमती महाराज जी जो आपको सहयोग दे सकती है भगवतम को छापने में। प्रभुपाद जी ने प्रथम सेकंड ये पहले दो भागों को प्रकाशित कर लिया था, तीसरा भाग करना था। तो प्रभुपाद जी जब बॉम्बे गए तो उनके वो श्रीमती महाराज जी के सेक्रेटरी ने कहा शी इज वेरी बिजी, वो आपके लिए कोई टाइम नहीं उनके पास। तो प्रभुपाद जी कहा उनको मिलना तो जरूर है। तो प्रभुपाद जी उस बिल्डिंग की सीढ़ियों में 5 घंटे बैठ गए जाप करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा शाम को श्रीमती महाराज जी ने निकलना था इसी रास्ते से। तो शाम को 7-8 बजे जो घर जा रही थी उसने देखा एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं सीढ़ियों में। तो मैंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कौन ही है, तो उन्होंने कहा ये सुबह आया था आपको मिलने, मैंने मिलने नहीं दिया तो यहां बैठा हुआ है सीढ़ियों में। तो बड़ी प्रभावित हुई और अगले दिन उसने प्रभुपाद जी को बुलाया अपने दफ्तर में और फिर उन्हें धन दिया भगवतम प्रथम स्कंद तीसरा वॉल्यूम छापने के लिए। तो प्रभुपाद जी इतने दिल भाव के थे ग्रंथों को प्रकाशित करना, और आपके कैनॉट प्लेस कॉफी हाउस वगैरह में प्रभुपाद जी खुद बैक टू कॉटन मैगजीन के साथ जाते थे बांटने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने प्रयास क्यों किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी समाज का उद्धार हो। अगर आज आपके दिल्ली शहर में भी 9 केंद्र मंदिर हैं और हजारों भक्त हैं, इनके पीछे मूल कारण यह है कि भक्त भगवद्गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं और पढ़कर जुड़ रहे हैं क्या इस संस्था के साथ। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, और आप सबके हम आभारी हैं कि आप इस सेवा में जुड़े हो। कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर मेरे साथ और भी भक्त आए हैं जो मैं चाहता हूं कुछ बोलें। तो आपके हम आभारी हैं कि हर साल आप लोग तो इस मैराथन में जुड़ते हो, और पिछले साल शायद आप भक्तों ने मिलकर 2,40,000 गीता बांटी थी, और ये साल मैंने सुना है आपकी योजना है उद्देश्य है 2,50,000 गीता बांटेंगे। हाँ तो अंदाजा लगाओ अगर 2,50,000 लोगों के पास आपकी गीता पहुंच जाए, वही है गीता को कम से कम 2-3 व्यक्ति तो पढ़ेंगे ही, तो 5-6 संभव है कि आपके प्रयास के कारण 5-6 लाख लोगों को गीता पढ़ने का मौका मिलेगा। और 5-6 लाख लोग अगर गीता पढ़ें और 5% लोग भी प्रभावित हो जाएं, तो आप ये सोच सकते हो आपका कार्य संभव सफल था। क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति तो भक्ति के मार्ग को स्वीकार नहीं करेगा। अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति है ब्रह्मांड ब्रह्मी देखो ना भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा भाई भक्ति राधा भी अनेक योगियों में गुजरने के बाद भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। तो ये जो मैराथन की सेवा है गंतव्य के वितरण की सेवा सब सेवाओं में सबसे प्रसिद्ध सेवा है। प्रभुपाद जी ने सेवा को बहुत बल दिया, क्यों, क्योंकि सेवा के द्वारा आप लोगों को जोड़ रहे हो किसके साथ, परम भगवान की शिक्षा के साथ। आखिर इन ग्रंथों में है क्या, भगवान का उपदेश, श्री भगवान परम भगवान बोल रहे हैं गीता किसके उद्धार के लिए, हम पूरी मानव प्रजा के उद्धार के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब जो जुड़े हो इस सेवा में, मैं सबसे निवेदन है कि आप जुड़े रहो और सफलता इस कार्य में निर्भर है आपके उत्साह के कारण। उत्साहित रूपों को सभी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य तत्त्व कर्म प्रवर्तन। अगर आप उत्साह से सेवा करोगे तो भगवान में देखेंगे ये व्यक्ति इतना प्रयास कर रहा है मुझे सफलता देने दो। और अगर आपको लगता है कोई आपका अपमान कर रहा है कुछ कर रहा है तो सोच लेना वो नीला जहां नितिन नंदा हरिदास के घर कर जा रहे थे, कईयों ने उनको आदर दिया और कईयों ने उनका अपमान किया। तो भगवान की सेवा में अगर हमें अपमान भी सहना पड़े हम सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सेवा किसकी खुशी के लिए कर रहे हो? हमारे लिए। तो एक बार फिर से आपसे पत्र का बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।